आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ वाराणसी में किया सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के महान नायकों को मिल रहा है स्थान। वाराणसी के शिवपुर में आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर रहेगा जोर। केंद्र सरकार ने नागरिकों से अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी न करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की दी सलाह। और राज्य में कल कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में आज ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान।
और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात वाराणसी के भारतीय रेल इंजन कारखाना परिसर में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि न्याय, धर्म और लोक कल्याण के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब समाज में आक्रांताओं को नहीं, बल्कि सुशासन और न्याय के महान नायकों को स्थान मिल रहा है। श्री योगी ने महानाट्य को वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरक बताया।
ये केवल एक महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्य और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहत अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की प्रतिकृति सौंपी। इसे आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी से प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में आयोजित होगा और इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से किया जाएगा। अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होगा। इसमें जनपद, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से नामांकन बढ़ाने, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और बैग वितरित करने तथा जन जागरूकता फैलाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल भारतेंदु नाट्य अकादमी पहुंचकर लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ कलाकारों का सम्मान भी कर रही है। उन्होंने बताया कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय पर कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला है।
प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लाइन ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। प्रदेश का हर नागरिक मानता है कि 17 से लेकर आज 2026 में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में रेल अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से इस लक्ष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया और पिछले वर्ष के सराहनीय प्रदर्शन के लिए रेलवे कर्मचारियों को बधाई दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि वो देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने नागरिकों को अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी न करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों का उल्लेख किया। बैठक में राज्यों को एलपीजी वितरण के घरेलू और आवश्यक जरूरतों पर प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। प्रवासी श्रमिकों को एफटीएल एलपीजी आपूर्ति से संबंधित रिपोर्ट में राज्यों ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी श्रमिकों को एलपीजी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पश्चिमी एशिया संघर्ष के प्रभाव के बावजूद देश में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति जारी है और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ये वितरण मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के शुरू होने के पहले के सामान्य स्तरों के अनुरूप है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों पर एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिलिंग प्रणाली में तकनीकी सुधार के लिए कल रात 10 बजे से आज दोपहर 2 बजे तक 16 घंटे के लिए अपनी सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रखी हैं। एक रिपोर्ट।
यूपी पीसीएल की बिलिंग प्रणाली में तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस कार्य के चलते ये सेवाएं बाधित रहेंगी। इस अवधि में उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज सेवाएं भी उपलब्ध नहीं रहेंगी। पावर कॉर्पोरेशन का कंज्यूमर ऐप भी बंद रहेगा। किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में पॉलिटेक्निक की कुल 2,44,972 सीटों के लिए 15 मई से 22 मई तक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चित्रकूट, वाराणसी, भदोही और ललितपुर में बारिश के साथ कई स्थानों पर बिजली भी गिरी। बेमौसम बारिश होने से किसान गेहूं की फसल को लेकर चिंतित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ वाराणसी में किया सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के महान नायकों को मिल रहा है स्थान। वाराणसी के शिवपुर में आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर रहेगा जोर। केंद्र सरकार ने नागरिकों से अफरा तफरी में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी न करने और एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचने की दी सलाह। और राज्य में कल कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में आज ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।